नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ योगेंद्र यादव का लेख, जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी अब चुनावी मुद्दा बन गई है। आखिरकार बेरोजगारी राजनीति का मुद्दा बन ही गई, इसका स्वागत होना चाहिए। कुछ तो बदला है, अब बेरोजगारी सिर्फ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का मुद्दा नहीं रही, बल्कि सरकार की नीतिगत चिंता के दायरे में दाखिल हो गई है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उफनने वाले आक्रोश की जगह अब रोजगार देने की योजना और रूपरेखा ने ले ली है, और निराशा का घटाटोप छटकर अब आशा की एक बारीक सी किरण में बदल रहा है। ये हुआ कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी की घोषणा के साथ। युवा न्याय गारंटी 5 नीतिगत प्रस्तावों का एक गुलदस्ता है, और कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आए तो इन्हें लागू करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी की घोषणा करके सत्ताधारी बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। बीजेपी को अब इससे बेहतर पेशकश करनी होगी, कोई नई योजना या गारंटी की घोषणा करनी होगी। इस कश्मकश में चाहे जो भी जीते, लेकिन रोजगार के सवाल पर राजनीति हो ये अच्छा है। किसानों के लिए MSP की गारंटी के बाद कांग्रेस की ये दूसरी गारंटी है, जिसमें राजनीतिक सूझबूझ और नीतिगत बुद्धिमत्ता का अनोखा मेल दिखाई देता है। किसी भी समाधान की शुरुआत समस्या के पहचान से ही होती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में हर जगह एक ही मुद्दा उभर कर सामने आया, और यह मुद्दा बेरोजगारी का था। जनमत सर्वेक्षणों में देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं की फहरिस्त में जो समस्या शीर्ष पर रहती आई है, उसकी सच्चाई को कांग्रेस के इस घोषणा से औपचारिक तौर पर राजनीतिक स्वीकृति मिल गई है। किसी समस्या को स्वीकार कर लेने के तुरंत बाद काम होता है उसे ध्यान से सुनने का। यह बात स्वयं घोषणा से जाहिर हो जाती है, जिसमें प्रतिरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के मुद्दे पर खूब सोच विचार किया गया है। युवाओं के कई अहम सरोकार और मांग को कांग्रेस ने अपने इस पैकेज में जगह दी है, लेकिन युवा न्याय गारंटी किसी आंदोलन के मांगों का दोहराव मात्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक घिसे पिटे विचारों या जादुई उपाय पेश करने की अपनी लीक से हटकर ऐसे समाधान पेश करने लगा है, जिसमें जिम्मेदारी और रचनात्मकता दोनों ही का मेल है। बेशक 5 नीतिगत प्रस्तावों के गुलदस्ते में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचेगी, उसका नाम है भर्ती भरोसा। यह 30 लाख सरकारी नौकरियों को देने के वायदे का नाम है। जाहिर है यह एक बड़ा वादा है, तो फिर तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि नौकरी किस क्षेत्र में दी जानी है और उसके लिए संसाधन कहाँ से आने वाले हैं। भारत की समस्या यह नहीं है कि यहाँ नौकरशाही अपने आकार प्रकार में बहुत बड़ी चढ़ी है या यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसी आकार की अर्थव्यवस्था से तुलना करें तो पता लगेगा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति सरकारी सेवकों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। इस तथ्य पर भी गौर करें कि 10 लाख की तादाद में वैकेंसी तो अकेले केंद्र सरकार ही के विभागों में है। इसके अतिरिक्त 3 लाख की तादाद में रोजगार का सृजन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सकता है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशाकर्मी के पद वाली केंद्र सरकार की योजनाएं तथा केंद्र सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। हाल के सालों में सरकारी क्षेत्र का दायरा सिकुड़ा है, सो इस क्षेत्र में कामगारों की तादाद कम हुई है। इस रीत को उलट दिया जाए तो 2 लाख की तादाद में नौकरियां और जुड़ जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि 15 लाख की संख्या में नौकरियां तो हम मौजूदा ढांचे के भीतर ही दे सकते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत कहलाएगी। शिक्षित बेरोजगारी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। इस कड़ी में शेष 15 लाख नौकरियों की गिनती के लिए ज़रूरी होगा कि बड़ी सावधानी से ऐसी नौकरियों की योजना बनाई जाए। नौकरी देने भर के मकसद से सरकारी नौकरी के पद गढ़ना न तो युक्तिसंगत है और न ही ऐसी नीति को टिकाऊ कहा जा सकता है। अगर नई नौकरियां निकल कर आती हैं तो उन्हें नई ज़रूरतों को या फिर जो ज़रूरतें टलती आ रही हैं उन्हें पूरा करने वाला होना चाहिए। इसका रास्ता है कि जीवन की गुणवत्ता और क्षमता में बढ़वार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए मानव संसाधन में सरकारी निवेश का विस्तार करना। इससे राज्यों अथवा शासन के स्थानीय निकायों में बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा के काम में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवा का विस्तार तथा समेकन करना भी जरूरी होगा। इसी तरह प्रकृति परिवेश को हरा भरा और जीवंत बनाए रखने के लिए कुछ ग्रीन जॉब्स जरूरी होंगे। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इस प्रस्ताव की तफसील आ जाएगी। इसके अतिरिक्त नई नौकरियों के लिए कितना धन जुटाना होगा, यह भी जानने और उस पर बहस करने की ज़रूरत है। अगर नई नौकरियों पर बहाल किए जाने वाले लोगों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के हिसाब से वेतन दिया जाता है तो केंद्रीय बजट के वेतन मद में कितनी और राशि देनी होगी यह बताना जरूरी है। नौकरी की गारंटी वाले नीतिगत प्रस्ताव के गुलदस्ते का एक हिस्सा और भी ज़्यादा आकर्षक है। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की। दरअसल यह अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिलाने की योजना है। इसके तहत 25 साल से कम उम्र के कॉलेज के हर ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा धारक को संवैधानिक गारंटी के तहत एक वर्ष के लिए 1,00,000 रुपये सालाना तक की अप्रेंटिसशिप हासिल करने का हक होगा। यह कोई पक्की यानी नियमित और स्थायी नौकरी नहीं है और न ही इस वैधानिक गारंटी का मतलब काम के अधिकार से लगाया जाना चाहिए, जिसका स्वप्न सोशल डेमोक्रेट्स देखा करते हैं। हाँ, हर हाथ को काम दो सरीखे लोकप्रिय मांग को पूरा करने का यह आर्थिक रूप से समझदारी भरा और वित्तीय रूप से व्यावहारिक तरीका ज़रूर है। इसलिए पहली नौकरी पक्की नाम की गारंटी से जुड़ी तफसील का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार लगा है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनी में जगह देना उन्हें बेरोज़गारी भत्ता देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कम अवधि की इस अप्रेंटिसशिप के सहारे युवाओं को कौशल सीखने में मदद मिलेगी। काम करते हुए वे हुनर सीखेंगे और ऐसा करने से नौकरी पाने में उनकी संभावनाओं में इजाफा होगा। निजी क्षेत्र के व्यवसाय भी इसी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा होगा कि बड़े कम खर्चे पर बहुत से कुशल प्रशिक्षु जुटाए जा सकते हैं। निजी व्यवसाय के पास अवसर होगा कि वे प्रशिक्षुओं के हुनर को परख सकें। सो ये उम्मीद करना बेमानी नहीं कि जो प्रशिक्षु अपने काम में बेहतर होंगे उन्हें कंपनी में स्थायी नौकरी पर रख लिया जाएगा। युवा न्याय गारंटी में सरकारी क्षेत्र में होने वाली भर्ती के बाबत एक पूरी आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 2 करोड़ नौजवानों को आए दिन जिन गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने के लिए पारदर्शिता के मानक, कैलेंडर तथा तरीके इस आचार संहिता के दायरे में निर्धारित किए जाएंगे। इस मामले में आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और उन पर बारीक चर्चा करनी होगी। लगभग 95,00,000 छात्र हर साल डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या डिग्रीधारी बनकर निकलते हैं। इनमें से लगभग 75,00,000 नौकरी की तलाश करते हैं। अगर यह मानकर चलें कि नौकरी की तलाश में जुटे इन 75,00,000 नौजवानों में लगभग आधे को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिलती, तो स्वीकार करना होगा कि हर साल कम से कम 40,00,000 नौजवानों की तरफ से अप्रेंटिसशिप की मांग आएगी। इस मांग को पूरा करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में 5 करोड़ या इससे ज़्यादा के कारोबार वाले उद्यमों की तादाद लगभग 10,00,000 है। ये उद्यम औसतन 4 इंटर्न रख सकते हैं। देश में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 पहले से ही लागू है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों के लिए अपने कार्यबल का 2.5 से 15% तक अप्रेंटिस के रूप में रखना अनिवार्य है। फिलहाल लगभग 45,000 कंपनियां इस काम में भागीदारी कर रही हैं। लेकिन कानून की नोक पलक सुधार दी जाए और कुछ सरकारी धन खर्च किया जाए तो अर्थव्यवस्था के समूचे औपचारिक क्षेत्र को इस काम में जोड़ा जा सकता है और साथ ही धीरे धीरे अनौपचारिक क्षेत्र को भी इस काम में भागीदारी के लिए तैयार किया जा सकता है। अगर सरकार ही पूरा मानदेय देने का जिम्मा उठाती है तो इस काम का कुल बजट 40,000 करोड़ रुपए ठहरता है, और अगर कंपनियों से लागत का आधा हिस्सा उठाने को कहा जाता है तो कुल बजट घटकर 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें ढेर सारी तफसीलों को तैयार करना अभिशेष है, लेकिन एक बात अभी से जाहिर है कि यह सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा राजनीतिक कदम है। प्रस्तावित 5 नीतियों के गुलदस्ते के अन्य 3 घटक ऊपर दर्ज 2 बड़े विचारों को साकार करने के लिहाज से उपयोगी और पूरक हैं। युवा न्याय गारंटी में सरकारी क्षेत्र में होने वाली भर्ती के बाबत एक पूरी आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे 2 करोड़ नौजवानों को आए दिन जिन गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने के लिए पारदर्शिता के मानक, कैलेंडर तथा तरीके इस आचार संहिता के दायरे में तय किए जाएंगे। लगभग 1 करोड़ की तादाद में मौजूद गिग वर्कर के लिए तैयार प्रस्ताव में राजस्थान की निवर्तमान कांग्रेस सरकार या फिर तेलंगाना में प्रस्तावित इसके संशोधित संस्करण के तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। यह एक प्रगतिशील कदम है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है। युवा न्याय गारंटी से संबंधित 5 नीतियों के गुलदस्ते की अंतिम बची चीज़ है युवा रोशनी योजना। इसके अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने की बात कही गई है, जिससे नौजवानों के शुरू किए गए व्यवसाय को कर्ज मुहैया कराया जा सके। इसे नौजवानों को लक्ष्य करती मुद्रा योजना का संशोधित रूप भी कहा जा सकता है। इसलिए इस प्रस्ताव को असरदार बनाने के लिए मुद्रा योजना पर बारीकी से पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा इसका भी हश्र वही हो सकता है जो उस योजना का हुआ है। चुनावी वादा चाहे वो कितना भी अच्छा हो, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता। बेरोजगारी के विशाल संकट को देखते हुए ऐसे किसी भी नीतिगत प्रस्ताव को अंतिम नहीं बल्कि अंतरिम ही कहा जा सकता है। ऐसे किसी भी योजना में बहुत से ढीले सीले और छोर होते हैं जिनमें गिरह लगानी होती है, आंकड़ों से जुड़े मसले होते हैं जिन्हें सुलझाना होता है। इसके साथ ही साथ नीति पर अमल करने के लिए धन जुटाने की बात सोचनी तो होती है। आगामी चुनाव के संदर्भ को देखते हुए कांग्रेस को ये दोष नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी इन प्रस्तावित नीतियों के मामले में भरे पूरे आशावाद से काम ले रही है। एक बात यह भी गौर करने की है कि प्रस्तावित योजनाओं में सिर्फ शिक्षित बेरोजगारों को ध्यान में रखा गया है और 50% ऐसे बेरोजगारों को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। चाहे जिस तरीके से भी देखें, ऐसी कोई भी योजना अपने स्वभाव में दरअसल तो राहत योजना की ही तरह होती है। बेरोजगारी की समस्या का असल समाधान खोजने के लिए हमें उस मॉडल में बुनियादी बदलाव करने होंगे जो रोजगार विहीन विकास को बढ़ावा देती है, और उस शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा जो विद्यार्थी को अज्ञानी, उद्यम विहीन या बेहुनर बनाती है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे द प्रिंट सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।